डकोर भी कुछ करे ज्ञान की टंकोर।
एक बार 70 की वाणी में आईसीयू बाबा तो है ही अब का आगे एक बच्ची के तन में आता था, कुछ खिलाते थे तो घर भाग जाता था।
है
गुलाब जल डाला
है,
गुलाब जब डाला और
ये भागा। इसका क्या मतलब?
अब भोक्ता है कि भोक्ता है? तुम्हारे नजर में क्या है? हैं? फिर पूछना क्या चाहते? अब फंसे। कोई बात नहीं, पूछो, दिल खोल के पूछो। हैं? बोलो। हाँ, बच्ची माना शिव बाबा के लिए तो बुढ़ी माता में भी आएंगे तो भी बच्ची कहेंगे या चच्ची कहेंगे? बच्ची ही कहेंगे। और
हाँ, शिव बाबा साथी कैसे हो जाता है?
माने जो साकार आत्मा है, साकार स्टेज को धारण करने वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा, वो निराकार स्टेज नहीं पकड़ती है?
पकड़ती।
हाँ, तो शिव समान नहीं हो जाती? बाप शिव आते हैं तो बच्चों को आप समान नंबरवार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? है? तो जो बच्चा आप समान, बाप समान, माना शिव समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, वो बाप का लकब विश्व कल्याणकारी का धारण करना चाहिए या नहीं? है? तो वो शिव बाबा हो गया। वो जानती है ना कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है। अगर उनमें पवित्रता का सत्य है तो अपनी पवित्रता की सच्चाई को, सत्य को संभाल के रखेंगी या विदेशियों के हाथ में पड़ जाने देंगी? क्या करेंगी? है? मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसमें भारतीय राजाओं की हार होने लगी, मुसलमानों का राज्य होने लगा। अब वो रानियां जो पवित्र रहती थी राजाओं के साथ, कोई ने उनके शरीर को छुआ तक नहीं, तो अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए? बनाए रखना चाहिए। इसलिए उन्होंने उस शरीर को, जो विनाशी है ही शरीर, उसको स्वाहा कर दिया अग्नि में पहले से ही। तो उन मुसलमानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। तो अच्छी बात है ना, इसलिए उनको सती कहा जाता है। प्योरिटी ही सच्चाई है, प्योरिटी ही शक्ति है।
डीजे वाले बोलते हैं बाबा ने कभी पहले बताया नहीं कि शंकर में भी आएंगे शिव बाबा।
नहीं बताया। ढेर सारी अव्यक्तवाणियां हैं, तुम पढ़ो उनके अर्थ बताओ। ढेर सारी मुरलियों के महावाक्य हैं, उनको पढ़ो और बताओ। बाबा ने तो कहा है कि ब्रह्मा है बैल। ब्रह्मा क्या है? बैल। बैल पर सवारी होती है क्या? होती है, है? हाँ, बैल पर शंकर की सवारी होती है। शिव कैसे बैठेगा? तो शिव शंकर में बैठता है और शंकर बैल पर बैठता है। तो ये बताया नहीं। और फिर ये भी बताया शिव शंकर अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं? शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। तो ये तो बताते हैं कि शिव शंकर आत्माएं अलग अलग हैं। फिर ये नहीं बताते कि भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया गया? बताते हैं, वो नहीं बताते, तुम बताते हो। शिव शंकर को मिला के एक इसलिए कर दिया गया कि शंकर ऐसी अनवरत याद में बैठता है कि शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बनाई लेता है। ऐसी स्टेज न ब्रह्मा ने बनाई, न विष्णु ने बनाई, न 33 करोड़ देवताओं में से कोई ने बनाई। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, शिव के साथ और कोई देवता को मिलाकर एक एक आकार नहीं करते। तो वो तो इन बातों को जानती ही नहीं और बताएंगी ही नहीं और मनन चिंतन मंथन करती ही नहीं।
बाबा, माता निकली है गांव, भैया लोग नहीं निकले तो माता सेवा करने के लिए निकल नहीं पाते, बांधे लिया है तो कैसे?
तो मनसा सेवा करे, अमृत वेले उठे है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे ज्यादा ताकत मन में है, मन की शक्ति में है, या भागदौड़ की शक्ति में, या वाचा में ज्यादा ताकत? तो मन की शक्ति तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि सारी दुनिया में आवाज फैला देगी। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की, इतनी वाचा सेवा की, इतनी भाषण किए, इतने कॉन्फ्रेंस की, इतने मेले मलाखड़े किए, दुनिया में आवाज फैल गई क्या? हा? आवाज तो फैली ही नहीं। ये आवाज कैसे फैलेगी? जब हमारी मनसा एकाग्र हो जाएगी तो माताओं को क्या करना चाहिए? है, अमृत वेले बैठ करके मनसा से सारा काम करे, मनसा के वाइब्रेशन से सब कुछ होगा। बाबा ने भी बोला हुआ है, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया, अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया, जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वही काम में जमेला हो रहा है। हाँ जी,
जैसे ये संगम लोग चला तो हम आत्मा है तो हमें तो प्रसाद करने का टाइम मिल जाता है।
हाँ?
लेकिन लौकिक में जो हमारे बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो विनाश का समय आएगा, तो इन्हें प्रसाद करने का टाइम कैसे मिलेगा?
देखो, जब बाबा फोन करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं और उठाने के साथ साथ बाबा की ओम शांति की आवाज आई और फिर बाबा का फोन आया, बाबा का फोन आया, बाबा का फोन आया। और जो बड़े बड़े हैं, कौन बोल रहा है, क्या नाम है, अरे अपना नाम क्यों नहीं बताते? उन्हें आवाज का ही याद नहीं आता है किसकी आवाज है। तो याद बच्चों के दिल में ज्यादा छपती है या बड़ों के दिल में ज्यादा छपती है? बच्चे महात्मा होते हैं, उनकी चिंता न करो, उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। प्योरिटी ही शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर वो आगे निकल जाएंगे और हमारी बुद्धि में विकार भरे हुए हैं, माया घुसी हुई है, 5 विकारों की माया हमारे अंदर है, इसलिए वो माया हमको आगे नहीं बढ़ने देती। चिंता न करो, माताओं को बच्चों को बहुत मोह आता है।
बाबा जैसे मुरली में बोला है कि तुम सबको संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो तुम संतुष्ट नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा के निमित्त है।
हाँ?
तो अपन चाहे कितना खुशहाल करके 95% लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं।
हाँ करो,
5% के जो लोग हैं क्या ये अपन से कभी संतुष्ट
होंगे? 5% को छोड़ दो, 5% जो है वो तो ऐसे है जो अष्टदेव बनने वाली आत्माएं होंगी ना, उनसे भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम तो अष्टदेव बनने वाले हैं ही नहीं। तो 5% की बात छोड़ दो, बाकी 95% तो हमसे संतुष्ट होने चाहिए। तो देखें कि हमारे जीवन में संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली 95% आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है।
और बाबा
जी
मुरली में कहा गया कि मैं त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, दूसरा ब्रह्मा के मैं जो पार्ट बजाया वो शिव ने बजाया, और शंकर का मैं भी पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा है जो सामना करने का पार्ट बजाती है। तो बाबा जो विष्णु में पार्ट बजाएंगे पवित्रता का, उसमें भी शिव की आत्मा मतलब शिव का कुछ वो रहेगा पार्ट, शक्ति में बाबा बजाएंगे
पवित्रता की जो चरम सीमा एवर प्योरिटी है, वो एवर प्योरिटी कोई भी मनुष्य मात्र में है, है? नहीं है। जो पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसने 63 जन्म लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? लिए होंगे। और 63 जन्मों में भी उसने ऐसी पवित्रता का पार्ट बजाया जो अभिविचारी प्यार्ट और किसी आत्मा ने नहीं बजाया होगा, है ना? फिर भी एवर प्योर नहीं कहेंगे। जैसे ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति, ये ब्रह्मा का पार्ट था या शिव का पार्ट था, है? अगर कहें ब्रह्मा का ही पार्ट था तो 63 जन्मों में वो सहन शक्ति क्यों नहीं धारण करके दिखाई? तो जैसे ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट शिव बजाता है, ऐसे ही शंकर में सामना करने की शक्ति का पार्ट शिव बजाता है, ऐसे ही वैष्णवी देवी में एवर प्योरिटी का पार्ट शिव ही बजाता है। कन्या है सो क्या हुआ? कन्या पवित्र नहीं होनी चाहिए? पवित्र कन्या ही तो होती है।
बाबा ने कहा ना मैं कन्या में सवारी नहीं करता।
हाँ, सवारी करने की बात कहाँ आई, यहाँ तो पार्ट बजाने की बात है।
तो पार्ट बजाएंगे तो प्रवेश तो करेंगे ना, प्रवेश तो होगी।
ये कोई बात हुई? हमारी पढ़ाई की जब संपन्नता होगी, हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पवित्रता। हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है प्योरिटी। तो वो एवर प्योरिटी को धारण करने की जो शक्ति है, जो पूरी श्रीमत पर चलेगा उसी में आएगी या किसी दूसरे में आएगी? तो वो पार्वती ही का पार्ट है जो एवर प्योरिटी को धारण करता है। यही शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी, नहीं तो अशक्त हो जाती है आत्मा।
बाबा घर के जो खाना आना नहीं बनाते, खाना बना तो जाकर अलग नहीं बना, और जो लोके के बहू है लड़का है वे कहते के यही खाना खा
है,
तो कहता है अलग
है?
अलग खाना नहीं बना देते, अपने हाथ से नहीं बना, जो बना रखा वही खा।
हाँ, लेकिन मुरली में तो बोला है
कि अपने हाथ से बना।
हाँ, वो तो कहते हैं, वो अकेले नहीं कहते, दुनिया भी कुछ न कुछ कहती रहती है।
अगर बनाते हैं तो बेधन बना।
सुनो, तो वो अकेले कुछ कहते रहते हैं कि सारी दुनिया ही हमसे कुछ कहती रहती है? सारी दुनिया हमसे कुछ न कुछ अपोजिशन में कहती रहती है, तो हम उनकी बातें मान लें ये जरूरी है? बाबा ने तो कहा लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना। वो कहेंगे गोश्त खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, तो हम पियेंगे?
बाबा से कोई भी सेवा करते हैं वो पूरा वो हम अपने से श्रीमत के अनुकूल नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जानबूझ के उस पर कमेंटबाजी कर रहा है और पाँव पकड़ के खींच रहा है, मतलब तो उससे क्या वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए या उसको जवाब देना चाहिए कि ऐसा है?
किससे किससे लड़ाई लड़ेंगे?
बाबा अगर किनारे जाओ तो फिर अंदर में फीलिंग आती है, काम सही कर रहे हैं फिर भी वैसा है।
फीलिंग तो फ्लू की बीमारी बताई,
ये भी देवान है।
फीलिंग देवान नहीं है, बिना देवान के फीलिंग आती है कहीं? ये ऐसे कहता है, वो वैसे कहता है, वो वैसे कहता है, ये गाली देता है, ये ग्लानी करता है, अरे हमको चिपक जाती है क्या? तो देवान है तभी चिपक रही है। हाँ जी, अपना काम करते रहो।
हाँ,
मंदिर में पैदल निगाह थे, पैदल चलो मंदिर की पैदल यात्रा करो।
कौन कहते
हैं?
भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग कहते हैं पैदल यात्रा करो। हाँ,
मंदिर जा लो पैदल यात्रा सही रहा।
हाँ,
तो आप पूछ रही है कि भाई सही है कि मतलब चले या न चले?
ये जो पांव है ना, पांव से पैदल यात्रा की जाती है। भक्ति मार्ग में पैदल यात्रा को अच्छी यात्रा समझते हैं, वास्तव में ये पांव की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें उठा ली है, पांव से कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही बुद्धि से भी पहुंचा जाता है। कहते ना, अरे तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची जहां तक बुद्धि हमारे गुरु जी की पहुंची हुई है। तो ये बुद्धि रूपी पांव भी है क्या? भगवान के पास बुद्धि रूपी पांव से चलकर पहुंचेंगे, भगवान से मिलेंगे, भगवान को पहचानेंगे, या इन पांव से चल करके पहुंचेंगे? बुद्धि रूपी पांव से चलकर पहुंचा जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें उठाई है, इसलिए वो पांव बता दिया उन्होंने। और
बाबा, हाँ, जैसे कहा गया है कि कहते हैं ना सीता अभी कहाँ, रावण के कब्जे में है या राम के, उन्होंने बोला तुम सब नंबर वाला सीताएं हो।
हाँ,
और जो नंबर अव्वल नंबर के रावण के कब्जे में है।
हाँ,
तो यहाँ अव्वल नंबर की सीता कौन है, अव्वल नंबर का रावण कौन है?
सीताएं सब नंबर वाले हैं, बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो, माने सब रावण की जेल में बंधन में हो या कोई छूटा हुआ भी है? हैं? सब बंधन में। अच्छा, वो सीता शब्द जो है वो सिर्फ माताओं कन्याओं के लिए ही लागू होता है या भाइयों के लिए भी लागू होता है? माता के लिए। भाई लोग सब निर्बंधन है, वो विकारों के बंधन में नहीं है, रावण के बंधन में नहीं है, रावण के राज्य में नहीं है, है? तो भाइयों के लिए भी ये बात लागू होती है, माताओं कन्याओं के लिए भी ये बात लागू होती है कि तुम सब सीताएं हो। क्या? तुम सब सीताएं हो तो रावण के बंधन में बंधी हुई हो, लेकिन जो अव्वल नंबर सीता है वो कौन? अच्छा, फिर अव्वल नंबर राम कौन है? कौन है? हैं? राम बाप एक ही है। अच्छा, शिव ऊपर से आता है, वो निराकार शिव ऊपर से आता है, वो पुरुष है कि स्त्री है? है? आत्मा को पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे? पुरुष कहेंगे। तो वो जब ऊपर से आता है और ज्ञान का बीज आकर के किसी में डालता है, तो बीज स्त्री में डाला जाता है या पुरुष में डाला जाता है? स्त्री में डाला जाता है। तो कौन सा कौन वो आत्मा है इस सृष्टि की जिसमें वो निराकार राम आकर के पहले ज्ञान का बीज डालता है? कौन है? कौन है? दादा लेकर तुमने एडवांस ज्ञान ही नहीं लिया है। हाँ, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ जिसने बताया वो भागीदार। हाँ, उसमें शिव प्रवेश करता है और ज्ञान का बीज उसकी बुद्धि रूपी धरणी में डालता है। तो अव्वल नंबर सीता कौन हुई है? कौन हुई है? तो वही अव्वल नंबर सीता हो गई। तो तुम सब सीताएं हो। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो, तो तुम कहकर के जब बाबा बोलते थे ब्रह्मा के तन में, तो राम की आत्मा के लिए तुम नहीं बोलते थे हैं? उसके लिए भी बोलते थे। तो अव्वल नंबर जो सीता है वो भी रावण की जेल में है कि स्वतंत्र है? है? वो भी रावण की जेल में।
और मुरली में बोला गया है।
हाँ,
मैंने इस मुकर रथ को बंगाल से लिया है।
हाँ,
तो बंगाल से लिया गया है मुकर रथ सेवक राम भाई आत्मा का।
हाँ,
क्या वो 83 जन्म में है या 84 में जन्म है? मेरा ये भी बोलता है कि हम 84 जन्म के अंतिम जन्म में आते
हैं,
तो वो कौन सा जन्म, 83 में है या 84 में?
बाबा जो बोलते हैं वो सच्चा या झूठा? बाबा जो बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। तो बाबा तो अंतिम 84वें ही जन्म में आता है या 83वें जन्म में आता है? बहुत जन्मों के अंत में आता है। और बहुत जन्मों का अंत में भी जो वानप्रस्थ स्टेज होती है 60 साल है 84वां जन्म, लेकिन उसके भी कितने साल पूरे हो जाएं? 60 साल। बहुत जन्मों के अंत में वो 60 साल हुए सन 36 में, है ना? और जो 60 साल हुए जिसमें आया उसका नाम क्या पड़ा? जब आते हैं तो नाम बदलते कि नहीं? है? हाँ, नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, नाम पड़ा ना। तो जो नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा की आयु कितनी? नहीं, ब्रह्मा की आयु 100 साल। 100 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बाबा ने भी बताया। तो सन 36 में कितने साल था? 60 साल था। 4-6 साल के बाद शरीर छोड़ दिया, तो क्या 100 साल पूरा हो गया?
नहीं।
इसलिए मुरली में बोला है मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूं। तो बहुत जन्मों का अंत हुआ 60 साल सन 36 में, और उसका भी अंत कब हुआ? जब 60 में 40 और जोड़े, कब होते हैं वो 40 साल पूरे? 76। तो 76 में बाप के रूप में बाप ने प्रवेश किया। इसलिए बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, माना 76 में मैं प्रवेश करता हूँ। तो सुनो, पूरी बात अभी हुई नहीं। तो जो 76 है वो 84वां साल भी है, 84वां जन्म भी है, और 76 के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है। क्या? 84वां जन्म भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है। वो 21वां जन्म भी है 76 से, और 84वां जन्म भी है। और
बाबा जैसे मुरली में बोला है जिस घर में सत्यज्ञ का पाठशाला हो उसमें शिवालय हो, शिवालय
नहीं हो, शिवालय हो, ये नहीं कहा। जहाँ गीता पाठशाला बनाई जाती है वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर समझ करके चले, कि ये हमने लक्ष्मी नारायण का चैतन्य में मंदिर बनाया है, तो जड़ मंदिर बनाते हैं उसमें जड़ मूर्तियां रखते हैं, लेकिन हमने जो गीता पाठशाला मंदिर बनाया है ये चैतन्य मंदिर है। अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण ही बैठ अपने बच्चों की शादी बर्बादी करे तो उसे गीता पाठशाला कहेंगे?
भगवान बहुत बड़ा है, कोई नहीं माने बाबा, अगर शादी करने आ तो फिर गीता पाठशाला का
क्या?
परिवार बहुत बड़ा है, जैसे बच्चे नहीं मान रहे,
हाँ
शादी करने आ तो फिर गीता पाठशाला।
ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो फादर करना है या कोई दूसरा करना है? तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को घर से एक दो तीन गेट आउट कर दिया ना, नहीं किया? किया तो हम क्या करें? तो फिर गीता पाठशाला का ढकोसला क्यों करते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर खोल लेगा, किसी और को दे दो। हाँ जी
बाबा,
नेवाड़ी में नेवाड़ी में कवाओगे? हाँ पिछली बार आए थे तब तो नई वाड़ी नहीं थी, पुरानी वाड़ी थी, अब जब नई वाड़ी बन जाएगी तब आ जाएंगे। बनाओ जल्दी जल्दी नई वाड़ी।
हाँ तमसिल में जो मंदिर बने हैं, दिगंबर मंदिर और श्वेतंबर मंदिर,
हाँ जी,
जो रामकृष्ण की यादगार, उसमें जैनी लोग क्यों कब्जे जमाए हैं?
उन्होंने बनाया नहीं है, जैनी लोगों ने वो मंदिर नहीं बनाया है क्या? हिंदुओं ने बनाया है। जैनी लोग उनको कहा जाता है जो जिन को फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बढ़ी ना फॉलो करने में, ऐसे ही जिन, जिन माना जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उनका नाम पड़ा जिन, और उन जिन को जिन्होंने फॉलो किया वो हुए जैन। तो जैन देवताएं हैं, असली जैन कौन है? देवताएं ही असली जैन है, वो तो उन्होंने झूठा नाम रख लिया है जैन धर्म। वो जिन को फॉलो करते हैं क्या? इंद्रियों के ऊपर जीत पहनते हैं क्या? नहीं, इंद्रियों पर कोई ऊपर जीत पहनने का पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं? है? जो ब्राह्मण है, जो देवता बनने वाले हैं, वो इंद्रियों पर जीत पहनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन उन जैनियों ने तो वो पत्थर ईंट पत्थर का स्थूल मंदिर बनाया। आप स्थूल मंदिर बनाएंगे या आपकी यादगार जो दिलवाड़ा मंदिर स्थूल बना हुआ है ईंट पत्थर का, आप वहीं बैठ के तपस्या करके चैतन्य मंदिर बनाएंगे? तो आप जब चैतन्य मंदिर बनाएंगे जहां सब तपस्या में आत्मिक स्थिति में बैठे हुए होंगे, निराकारी स्टेज में बैठे हुए होंगे, उस समय आपको सच्चा जैन कहेंगे।
बाबा सनातन धर्म जैन धर्म एक ही धर्म है?
बिल्कुल, इसलिए तो झाड़ में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया, झाड़ में बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म कहीं है? है ही नहीं।
सनातन धर्म से जैन धर्म बना,
वो जैन धर्म उन्होंने आर्टिफिशियल लगा लिया, हिंदुओं के शास्त्रों की नकल कर ली बाद में। हिंदुओं में 24 अवतार तो उन्होंने 24 तीर्थंकर दिखा दिए, हिंदुओं में आदिदेव को नंगा दिखाया गया शंकर जी को, तो उन्होंने भी तीर्थंकर को नंगा दिखाई दिया। हिंदुओं में त्रिमूर्ति में दो देवताएं हैं, एक कपड़े पहना हुआ और एक निर्वस्त्र शंकर जी, तो ऐसे ही उन्होंने दो प्रकार के मंदिर बना दिए, एक बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार जो कपड़े पहने हुए हैं, और एक है वो जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं, याद में शरीर रूपी वस्त्र को भूल गए, उतार दिया। उन दिगंबर जो मंदिर होते हैं दिगंबरों के, वो ऊंची स्टेज में होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी दो मंदिर हैं, एक नीचे है वो सफेद मूर्तियों वाला है, बका बक लका लक सफेद कपड़े पहनते हैं, और एक काली मूर्तियों वाला है जो देखने में तो काले दिखाई पड़ रहे हैं। क्या देखने में काले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा निराकारी स्टेज वाली है, इसलिए वो ऊंची स्टेज में बैठे हुए हैं। तो वो सब हमारी यादगार है, वो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, टिकाने, ये तो सब भक्ति मार्ग में बनाए। हाँ सपने में
सीधे आते तो डर लगा।
सपने में क्या होता है,
सीधे सपने आ डर लगता।
अच्छा, जब उल्टे सीधे काम करते हैं तब डर नहीं लगता है। देखो स्वप्न, स्वप्न और संकल्पों का हिसाब किताब है। सारे दिन में जैसे जैसे संकल्प करते रहेंगे, रात में वैसे ही सपने आएंगे। 63 जन्म जैसे जैसे हमने गंदे काम किए हैं, हम अभी ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अगर हम चाहें कि हमको अच्छे सपने आए, तो रील में तो 63 जन्म के घूमेंगे, अच्छे सपने कहां से आ जाएंगे। जागृत है तो बुरे संकल्प आएंगे, बुरे संकल्पों की रील घूमेगी। सोते हैं तो बुरे सपने आएंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प आएंगे जागृत अवस्था में, और सो गए तो अच्छे सपने
बाबा की याद है। बड़े बड़े राजा महाराजन के घर जाकर चले गए, तो जैसे अपनी एक व्रत है
जो तुमको आता है वो सबको आता है क्या? नहीं आता ना, तो तुमने जैसे कर्म किए ऐसा तुमको आता है, पीछे पड़ा हुआ है। जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे स्वप्न और संकल्प ब्राह्मणों की रील में घूमते रहते हैं। उनसे छूटने का तरीका है बाबा की याद, वो बार बार आए और हम बार बार बाबा की याद में रहकर उनको भगाएं।
बाबा जी से सुना आपने कि जैसे 36 में आए तो 60 साल के, और ब्रह्मा की जो है 100 साल आई है, अभी जो समझाया आपने, तो 36 में आए और फिर 3-4 साल के बाद शरीर छोड़ दिया भगीरथ ने। तो बाबा इससे प्रश्न उठा देते हैं लोग कि आत्मा की तो कोई आयु होती नहीं, तो फिर वो कैसे
आत्मा की आयु नहीं होती, लेकिन पार्टधारी की तो आयु होती है, जो शास्त्रों में गायन है प्रजापिता ब्रह्मा या ब्रह्मा। ब्रह्मा शरीर से होता है कि आत्मा होता है? आत्मा तो सिर्फ एक ही है जिसकी आत्मा का नाम शिव है, बाकी जितने भी आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? फिर ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा ये आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? शरीर का नाम है। आज हाँ ये गीत किसने गाया, ब्रह्मा कुमारों ने या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों ने? गीत ब्रह्मा कुमार गाते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार गाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों ने तो बुरली से वो वाक्य निकाल लिया जिसमें बाबा ने बोला है न गीत गाना है न गीत सुनना है, नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे अरे ये कैसा बिना सिंह का सामने खड़ा हुआ है, गीत गा रहे हैं, ढोल मजीरा आ रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, सिंह का विनाश होने वाला है दुनिया का, विश्वास ही नहीं करेंगे। तो उनकी एक्ट और कथनी और करनी एक साबित नहीं होती है, इसलिए वो गीत गाने वाले जिन्होंने ये गीत गाए हैं, गीत गाते हैं ना, जिन्होंने ये गीत गाए हैं वो सिर्फ शांति पाते हैं, एक ही वरदान पाते हैं, क्या मुक्ति धाम जाएंगे, लेकिन जीते जी इस शरीर से जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, इसलिए एक नया वरदान मिला। वो गाते भी ऐसा ही है।
भक्ति मार्ग में जो राम राम के साथ तीन भाई हैं, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तो उनकी बहुत महिमा है, और कृष्ण के भी जो चार वो मित्र दिखाए हैं, सुदामा, मनसुखा, और अभी हमको पता चला जो आदि में जो तीन आत्माएं थी जिन्होंने बाबा का साथ दिया था आदि में, तो उनका गायन है वो उनके लिए, तो बाबा उन्होंने तो बाबा को धोखा दिया, तो फिर उनका इतना महान रूप में क्यों गायन है कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न उनका उस रूप में जो मतलब गायन है, लक्ष्मण ने तो राम का हमेशा साथ दिया, कभी छोड़ा नहीं।
लक्ष्मण ने जो साथ दिया तो क्या वो जंगल में कांटों के जंगल में साथ रहा नहीं है? वो तो फिर भी साथ रहता है संकल्पों से, लेकिन संकल्पों से विरोध करने वाले दो हैं, एक इस्लाम धर्म और एक क्रिश्चियन धर्म, ये चार मुख्य धर्म हैं। चार मुख्य धर्म में से दो हैं राइटियस, अच्छे संकल्प करने वाले, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, और दो हैं लेफ्टिस्ट, उल्टा संकल्प चलाने वाले, इस्लामी और क्रिश्चियन। तो उन चारों के चार प्रकार के बीज हैं।
भरत का भी तो दिखाया कि उन्होंने राजगद्दी स्वीकार नहीं करी और मतलब वो राजमहल में ही बन के समान रहे।
हाँ, तो अभी भी वो आत्मा ऐसा ही पार्ट बजा रही होगी, कांटों के जंगल में गई पड़ी होगी, तपस्या कर रही होगी, तपस्वी होगी, कोई मान मर्तबा स्वीकार नहीं कर रही।
विरोधी ही है और मानवत्ववादी स्वीकार
क्या
मतलब विरोधी भी है वो।
झाड़ के चित्र में भारत की तरफ मुंह करके एक ही दिखाया गया है, वो कौन है? इब्राहिम। वो अनजाने में विरोधी साबित होता है, जब जान जाएगा तो विरोधी नहीं रहेगा, वो तो भीष्म पितामह का पार्ट है, जन्म से ही पवित्र है, बाल ब्रह्मचारी है, बाकी जो दो हैं वो तो शादी बर्बादी करके बैठ जाते हैं, दुनिया के सुख भोगते हैं, इसलिए वो तो विरोधी हैं। ज्ञान में आकर के बाबा ने बोला शादी बर्बादी, और कोई ज्ञान में आने के बावजूद भी शादी करके बैठ जाए तो भगवान की ग्लानी कराने वाला दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? दुश्मन हो गया। भरत का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने तो आल बाल ब्रह्मचारी का पार्ट बजाया। सूरज निकलने से पहले अमृत वेला, सूरज निकलने से पहले लाल 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 रोशनी निकलती है सूरज से पहले, उसे कहते हैं उषा। वो रोशनी भी ना निकलने पाए तब कहेंगे अमृत वेला। करो, चार बजे से करोगे तो भी, तो चार बजे थोड़ी सूरज निकल आता है। अरे एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज के साथ जो लाल लाल ऊषा निकलती है आभा निकलती है, वो आभा निकलने के बाद अमृत वेला खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, चार बजे करो, सवा चार बजे करो, कुछ तो करो। ज्यादा पैसा कमाओगे तो थकोगे, सूखी रोटी से काम चला लोगे तो आधा किलो आटे में काम चल जाएगा। पुरुषार्थ करने के लिए क्या चाहिए आदमी को? पाव भर आटा, पाव भर आटे की रोटी बना के नमक डाल के रोज खाते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे कि नहीं? दुनिया में कोई लोग ऐसे हैं जो जिंदा रह रहे हैं? वो जिंदा रह सकते हैं तो हम भी जिंदा रह लेंगे। बाकी बाकी और ढेर सारा चाहिए तो फिर काहे के लिए इतनी मेहनत करते हैं? चलो जैसा जैसा।
वार्ता में जैसे बताया गया कि शंकर बैल पर 24 घंटा सवारी नहीं करता।
शंकर के लिए थोड़ा ही बताया, ऐसे ही बताया।
मतलब तो सुप्रीम सोल तो मतलब 24 घंटा सवारी नहीं करता, तो सुप्रीम सोल कहाँ जाता? परम
सुप्रीम सोल तो बैल पर सवारी करता ही नहीं। सुप्रीम सोल जो है इतनी ऊंची आत्मा जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, धर्म पिताओं में भी बापों का भी बाप, वो तो सबसे ऊंचे है। जो सबसे ऊंचे है वो ऊंच में प्रवेश करेगा या जानवरों में कीड़े मकोड़ों में प्रवेश करेगा?
है 24 घंटा सवारी करता
है। हम जो पूछे उसका जवाब दो। जो ऊंच से ऊंचे है वो जानवरों में प्रवेश करेगा, जानवर बुद्धि में प्रवेश करेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाली मनुष्य बुद्धि में प्रवेश करेगा? तो वो मनुष्य में प्रवेश करता है। हाँ,
मुंडी में बोला है अभी कलयुग में तुम जो कर्म करते हैं वो कर्म अकर्म बन जाते।
इधर आओ, तुम्हारा चेहरा सामने आए। हाँ हाँ जी,
मुंडी में बोला है।
हाँ,
अभी कलयुग में तुम जो कर्म करते हो वो कर्म अकर्म बन जाते।
अकर्म नहीं करते हैं, विकर्म बन जाते। गलत सुन लिया। हाँ, कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं, विपरीत कर्म बन जाते हैं, क्योंकि माया का पसारा सबकी बुद्धि में है, इसलिए विपरीत कर्म कराई देती है। और सत्युग में जो कर्म करेंगे वो सब आत्म की स्थिति में रह करके करेंगे, इसलिए कोई असर नहीं होगा।
बाबा, बांदा की मुरली में बताया कि विनाश के समय हिमालय पर्वत बचेगा, सब डूब जाएगा, राहु पर्वत पे जमीन खरीदी जा रही है।
वो तो पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए ठिकाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर जो आप पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे, जो शुरुआत से ही तपस्या भूमि बनी हुई है, जहाँ का वायुमंडल बना हुआ है, वहाँ एटम बमों का उतना असर नहीं होगा। और वो पहाड़ तपस्या भूमि का एक ऐसा कल्प कल्पांतर का स्थान है जहाँ भूकंपों का उतना असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा पहाड़ ग्रेनाइट के एक ही पत्थर का बना हुआ है।
तो मुरली में तो जी बोला गया हिमालय पर्वत अलग है, अलग दिशा में, आहू पर्वत अलग दिशा में है।
हिमालय पर्वत जो है वहाँ स्वर्ग स्थापन होगा, ऐसा किसी मुरली में बोला
नहीं?
ये तो तुमने अपनी मनमत बना ली। बाबा ने तो बोला है कि जमुना के कंठे पर नई दुनिया बनेगी, तो जमुना का कंठा कहाँ और हिमालय पहाड़ कहाँ?
मुरली में बोला थे कलयुग में कलराठी जमीन
का खाद डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं ना, तो यूरिया डालते 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 जमीन कलराठी हो जाती है। यूरिया, यूरिन कहते हैं पेशाब को, कहते हैं ना मूत की औलाद। तो मूत डालते 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 ये धरणी है ना, बेहद में कौन है? कन्या माताएं क्या है? धरणी है। 63 जन्म से वो यूरिया डाली जा रही है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये अच्छी बन जाएगी, कलराठी जमीन हो गई है, ये बुद्ध रूपी धरणी कलराठी हो गई है, तो गलत क्या करो?
पता नहीं कलराठी किसमें, उसका अर्थ क्या है?
कलराठी का मतलब उसमें फिर कुछ पैदाइश अच्छी नहीं हो पाती, बढ़िया पैदाइश नहीं होती है।
हाँ, जैसे आप बोलते हैं कि जुगल की कमाई में स्वाद है ऐसा लगता है, अब जैसे लड़का कमाते
हैं
और लड़का से मांगना पड़ता है, देते रहते हैं आपसे भी मांगना पड़ता है, तो
बाबा ने तो कहा मांगने से मरना वाला, क्या पूछते हो
कि मांगे कि ना मांगे,
क्यों मांगो जब तुम्हारा पति की कमाई में आधा हिस्सा हक है?
जब पति नहीं है तो कौन देगा?
पति नहीं है, पति नहीं है तो तुम्हारा पतियों का पति नहीं आया हुआ है, झूठ कितना बोलती है। जब पति नहीं है तो तुम्हारा पति कौन बन गया ज्ञान में आने के बाद?
यही पूछ रहे हैं कि हम
पूछ क्यों रही हो?
त्याग दें सब, यही कहते हैं कि अब हम रहे तो रहे नहीं, अपना चले जाए अपने बाप में।
तुम्हें मना कौन करता है? तुम्हारा मोह तुमको मना करता है।
कहा दोस्तों, हम कह देते हैं भाई तुम ना दोगे तो हम चले जाएंगे, अपना हिस्सा लेके जाएंगे।
तुम धमकी क्यों देती है उनको? धमकी तुम इसलिए देते हो कि डर जाए फिर हमको रखें?
नहीं ना रखें तो ऐसे चले जाए, सब छोड़ के चले जाए, अरे कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे ये तो मोल रहे।
तुम्हारा हिस्सा है तो तुम ले लो, मना कौन करेगा?
बाबा मुंडे बोला है कि एक ज्ञान में चलेगा तो सारा परिवार निकलेगा।
हाँ?
तो कोई घर के निकल नहीं, आश्रम में जा तो वहाँ मतलब घमचक मचा देते हैं, तो मुंडी सुनते नहीं है, ज्ञान कुछ सुनते नहीं है,
तो कोई बात नहीं आगे चल के चल पड़ेंगे।
तो जब बाबा गाड़ी एक चलेगी ट्रेन तो फिर कैसे सब लोग
वो ट्रेन तभी ही चलेगी जब तुम्हारे परिवार के सब ज्ञान में चलने लगे।
निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ
बाबा, चैन खेल रही है ना, जंजीर तान रही है ना, तो सब लोग
जंजीर बाबा ही से खींचना शुरू कर दे ना।
अभी तो आश्रम तक ढमचक मचा आने नहीं देते,
अभी तुम्हारे बुद्ध रूपी हाथ में चैन नहीं है,
चैन खींचने की
चैन खींचो। हेलो
बाबा, भागीदार के लिए बोला कि 10 साल से रह रहा था, तो 10 साल से जब भागीदार रह रहा तो दादा लेख राज ने अपनी बहनोई कब बनाया? 10 साल से रह रहे उस समय उम्र तो उनकी 50 साल की थी।
हाँ, तो
बहनोई कितने वर्ष में बनाया?
कितने वर्ष माने 10 साल? इससे कोई ये कनेक्शन लगता है कि 10 साल पहले ही बहनोई बनाया होगा?
10 साल
से रहने वाला का मतलब है बाबा के पास दुकान में 10 साल से नौकर बन के रहने वाला। बहनोई की तो बात ही नहीं यहाँ आई। हाँ,
बाबा ये
आया
कि पीनी इतना भी समय नहीं रहेगा कि पीनी पहन सके,
वह
पीनी मतलब क्या?
पीनी माने ऐसे करके बाकी माना जब विनाश होगा तब इतना भी टाइम नहीं बचेगा, अचानक ऐसे होगा कि जो प्यारे हैं जो स्नेही है उनकी भाखी भी पहन सके, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। जो राधा बच्ची होगी जिसको राधा बच्ची नाम दिया गया है वो अंतिम जन्म में विष्णु रूप बन के रही होगी या अलग अलग होकर के रही होगी संस्कारों में? है जो आदि में सो अंत में, षष्ठी के आदि में विष्णु, तो अंतिम जन्म में भी जब अंत आएगा तो किस रूप में होगी? विष्णु रूप में होगी। तो जो नारायण वाली आत्मा है वो नारायण और राधा वाली आत्मा नारायणी, दोनों स्त्री पुरुष हो गए। माना बहनोई और बहन हो गए, और
बाबा जी जैसे बेसक वाले बच्चों को ज्ञान सुना हो और या बहनों को मालूम चल जाए जो वहाँ समर्पित है धरने के लिए तैयार हो जाती है
तो आप बद्रा
तो बहुत अल्लाह अल्लाह गुल्ला करने लगती
तो अपने मुंह से करती ना अल्लाह गुल्ला आप तो मुंह से तो नहीं करती
अच्छा ही लगता ना घर में आके घर पे आके लड़ाई दंगा करे
आपके घर पे आके
और का पहले उनसे कहो कि भाई जी बहन बहुत अच्छी है बहुत अच्छी हो फिरो अपोजिट बोलो भूल ही नहीं सकती कि अभी तुम कह रहे थे बहन बहुत अच्छी है और वो तुम्हारे घर भैया की क्या बात है
उनको डूबी जा का मिसाल दो जब डूबी जा नहीं करते हैं भक्ति मार्ग में तो देवियां देवियां हैं भगवती हैं भगवान हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं मंदिर बनाते हैं उनको सजाते हैं सोना पहनाते हैं भक्ति मार्ग में करते हैं कि नहीं और जब पता चल जाता है कि भगवान आया हुआ है भगवान सच्चा है और ये देवियां झूठी हैं तो उनको ले जाके डुबो देते सो ही कर रहे हैं बहन जी हमको दूसरा नहीं कर रहे हैं
बाबा हमारे घर में एक लड़का है वो नहीं मानता है बहुत बुरा कर्म कर रहा है सब चीज बनाता है खाता है हम लोग परेशान है उसकी
माँ क्यों परेशान हो तुम आत्मा हो कौन हो
आत्मा है
तुम आत्मा हो हैं तुम आत्मा हो और तुम्हारा लड़का भी आत्मा है कि नहीं
घर में गंदगी
अच्छा तुम कौन हो
आत्मा
हो तुम्हारा लड़का आत्मा है कि नहीं किसका बच्चा है
बाबा
है बच्चा तो तुम्हें क्या चिंता है
बाबा तीन पग जमीन का
क्या हो गया
तीन पग जमीन मांगते तो क्या है
आप कितने पग जमीन में बैठे हुए
हैं
आप जो बैठे हुए हैं कितने पग में बैठे हुए
तीन
तीन पैर पर तो क्या हुआ
अच्छा तो वो ही आखिरी में तीन पग जमीन मिल जाना
जब वो बता दिया अव्यक्तवाणी में बता दिया कि पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़ेगा क्या सोफा सेट नहीं मिलेगा लेटने के लिए तकिया गुदगुदा नहीं मिलेगा कहाँ बैठना पड़ेगा पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़ेगा तो तीन पैर पृथ्वी नहीं होगी फिर क्या बात
माया नावर की बेटी है तो उसका पति
है अरे बोलो मत भाई हाँ किसमें हाँ तो यहाँ शूटिंग की बात है ना वहाँ जो गोला दिखाया गया है स्वर्ग का गोला वो कंप्लीट स्थापना दिखाई गई है लेकिन जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है ऊपर उसमें एक शक्ति कम है क्या जो शक्ति कम है वो जैसे कि क्रिश्चियन धर्म की गृहिणी नहीं है क्या उनके मंदिर का नाम होता है गिरजाघर क्या नाम होता है
गिरजाघर
तो वो गिरजाघर वास्तव में उनकी गृहिणी नहीं है घर माने गृहिणी ईंट का मकान गृहिणी नहीं होता है कौन होता है गृहिणी स्त्री ही गृहिणी होती है तो जो क्रिश्चियन धर्म है वो कोई को अपनी गृहिणी नहीं मानता क्या घर में बुद्धि रहनी चाहिए ना तो बुद्धि उनकी टिकती नहीं है एक में इसलिए वो एक लोप हो जाती है क्यों लोप हो जाती है क्योंकि जब संगम युग में भगवान आते हैं तो जो क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा है वो भगवान का इतना अपोजिशन करती है कि संकल्पों के अंदर भी ये बात चलती रहती है हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा तो जो भगवान के लिए ऐसे सोचेगा उसका अपना घर गिर जाएगा या बचा रहेगा तो सीढ़ी में वो गृहिणी है ही नहीं भक्ति मार्ग में गिरजा घर बन जाता है
जैसे देवी देवता तो आज के युग में है जैसे
और जगह जैसे दिखाते हैं जब कहीं दरबार वगैरह लगते हैं सबकी मान में देवी आती है या ऐसे देवी आते हैं तो बाबा भूत कौन होते हैं जो
भूत प्रेत वो भूत प्रेत अपने को देवी देवता बताते हैं
कुछ बातें तो मतलब जान जाते हैं वो उन्हें मालूम रहती है जैसे जो जब उनके सामने गिनती करने के लिए बैठते हैं तो बता देते हैं तुम्हारी ये परेशानी ये परेशानी
सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है कि इस स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म हो जाता है स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है इसलिए उसमें ज्यादा ताकत होती है। सड़कों पर मजमा लगाने वाले कोई कोई जादूगर आते हैं मजमा लगाते हैं किसी आदमी को सुला देते हैं मजमा लगा हुआ है किसी आदमी से पूछा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम गिनो मत हम इस आदमी से बतवाते हैं उसमें भूत प्रेत प्रवेश करा दिया जो नीचे पड़ा हुआ है सोया हुआ है उसे पूछा बताओ उस आदमी की जेब में कितने कितने नोट हैं कितने पैसे हैं वो एक्यूरेट बता देता है ऐसे बता देता है उसकी बुद्धि सूक्ष्म है ना वो स्थूल शरीर के बंधन में तो है नहीं इसलिए वो वहां का वहीं बता देता है।
बाबा वो कहते हैं हम ठीक कर देंगे
क्या
ठीक भी कर सकते हैं
ज्यादा पावरफुल आत्मा होगी उसके कंट्रोल में तो ठीक करेगी कमजोर आत्मा होगी तो ठीक नहीं कर पाएगी और हमें तो पावरफुल से पावरफुल मिला हुआ है कौन मिला हुआ भूत मिला हुआ है कि भूतनाथ मिला हुआ है
बारह ज्योतिर्लिंग गायब है
हाँ
बारह जो मड़के हैं बारह प्रवेश करते हैं
शिव बारह में प्रवेश करता है या 108 रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश करता है रुद्रमाला में कितने मणके होते हैं 108 जो रुद्राक्ष मणके होते हैं उनमें मुख बने होते हैं वो मुख लेने की यादगार हैं कोई में एक मुख कोई में चार मुख कोई में दस मुख कोई में 14 मुख माना उन्होंने इतने इतने मुंह से बातें की हैं माने इतने प्रकार की आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं किन में जिनमें शिव प्रवेश करता है उन रुद्रमाला के मणकों में शिव भी प्रवेश करता है सतु प्रधान स्टेज में बाद में कुत्ते बिल्ले भी प्रवेश करते हैं
उन्हीं बाबा रुद्रमाला के मणकों
उन्हीं रुद्रमाला के मणकों में
14 प्रकार
की आत्माएं प्रवेश करती हैं उनकी यादगार 14 मुखी एक मुखी मिलता ही नहीं कहीं वो एक ही है जिसमें शिव ही प्रवेश करता है बाप दादा ही प्रवेश करते हैं कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता
और बाबा जो भी हमने भरत का बताया कि भरत भी वनवास में रहता है तो वो तो इस्लाम धर्म की आत्मा होगी
तो
और लक्ष्मण वाली बाबा बुद्ध धर्म की और तो बताया कि वो शादी कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म लक्ष्मण भी तो बाबा जंगल में गए थे
हाँ जंगल में गए लेकिन शादीशुदा थे उनकी मर गई होगी शादी तो कर ली अपनी मनमानी तो कर ली घोड़ी पे तो चढ़ बैठे फिर बाद में मर गई अगर कुएं में कूद के गिर गई तो कांटों के जंगल में आ गए कि नहीं आ गए
बाबा बीके वाले गाते हैं मुरली धर तो नीचे आ चुका है मुरली धर तो नीचे आ चुका है
आ चुका है
हाँ,
मुरलीधर मुरलीधर ही तो नहीं आप मुरलीधर कहे कि उनसे पूछो मुरली उनसे पूछो मुरलीधर आ चुका है कि मुरलीधर ही आ चुकी है पूछो तो उनसे
गाके क्यों बुलाते जानते होंगे क्यों बुलाते
क्या
जानते होंगे अभी कि आ चुके हैं तो फिर क्यों बुलाते
हाँ उनसे पूछो बुलाते क्यों अगर आ चुके हैं तो स्त्री चोले में आते हैं ना
बाबा जो भक्ति मार्ग में काम ध्यानु गाय दिखाई उसमें सब देवताओं के कैसे क्यों दिखाई
काम जो है जो गाय दिखाई है वो गाय किस बात की निशानी है? गाय क्यों दिखाया है, भैंस क्यों नहीं दिखा दिया? भैंस की बुद्धि ज्यादा तीखी होती है या गाय ज्यादा सात्विक बुद्धि होती है? गाय की सात्विक बुद्धि होती है। जो भैंस बुद्धि है वो थोड़ी पहचानेंगे भगवान को। वो जो गाय है जो कामधेनु के रूप में दिखाई जाती है वो भगवान को पहचान लेती है और पहचानने के कारण वो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में। जब सारे जगत की अम्बा है तो 33 करोड़ देवताओं की अम्बा नहीं है, तो उसके बुद्ध रूपी पेट में वो 33 करोड़ देवताएं नहीं होने चाहिए। तो दिखाए गए तो क्या बुरा कि दिखाया गया, अच्छी बात है।